गृहमानीत माहूय प्रहलादं
दैत्ययाजका
स्वस्य स्वलक्षणया वाचा संपृच्छन्तं सामभिः गृहमानीत माहूय प्रहलादं
दैत्ययाजका
स्वस्य स्वलक्षणया वाचा संपृच्छन्त
सामभिः
गृहमानीत माहूय अत्यंत सुहावने शब्दों से अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जब हिरण्यकश्यपु के नौकर बालक प्रहलाद को गुरुकुल वापस ले आए तो असुरों के पुरोहित शंड तथा अमर्क ने उसे शांत किया। उन्होंने अत्यंत मृदु वाणी से तथा स्नेह भरे शब्दों से उससे इस प्रकार पूछा। तात्पर्य, शंड तथा अमर असुरों के पुरोहित थे। वे प्रहलाद से यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वे कौन से वैष्णव हैं जो उसे कृष्ण महामनामृत का उपदेश देने आते हैं। उसका मंतव्य उन वैष्णवों के नामों का पता लगाना था। प्रारंभ में उन्होंने बालक को डराया धमकाया नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता था कि वह अस्त्रदर्शी को न बताता। अतएव उन्होंने अत्यंत मृदु तथा शांत भाव से इस प्रकार से पूछा। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज से प्रहलाद महाराज के चरित्र को सुना रहे हैं। अब तक से आप लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यप को असुर होने के बावजूद भी अपने पुत्र को शिक्षा देना चाहता था। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो बाप माँ अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं वे उसके शत्रु होते हैं। सभी बाप माँ का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। भगवान कृष्ण और बलराम उनको भी शिक्षा दी गई थी। जब ब्रज में थे तो उन्हें एक प्रकार की शिक्षा दी गई थी। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जानना, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब वह शिक्षा जो जीवन में काम आए। बिना काम के शिक्षा से क्या फायदा। आजकल की जो शिक्षा है बिना काम की है। जितनी पढ़ाई पढ़े हो उसमें से कितना जीवन में ला सकते हैं, बहुत कम। याद है जो पढ़े हैं भूल गए हैं, लेकिन पहले बचपन से वो शिक्षा दी जाती थी वर्णाश्रम के अनुसार जो कि उनके काम आए। जैसे कृष्ण बलराम जब छोटे बालक थे तो उन लोगों को शिक्षा दी जाती कैसे बछड़ा पकड़ना, कैसे गाय धोना, थोड़ा और बड़े हुए तो कैसे बछड़ा को चराना, गौओं को चराना इत्यादि इत्यादि। क्योंकि वैष्णव का धर्म है कृषि गोरक्षण वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभाव। तो ये सब शिक्षाएं उनको दी गई। जब वे लोग मथुरा आए तो राज परिवार में तो राजा का शिक्षा अलग होता है। तो वो शिक्षा देने के लिए वसुदेव जी उन लोगों को संजीवनी मुनि के आश्रम में भेजे। तो बाप माँ का धर्म है यह देखना कि बच्चे सुशिक्षित हों। हिरण्यकश्यपु असुर था लेकिन फिर भी इस बात से अवगत था, इसलिए शुक्राचार्य के विद्यालय में इन लोगों का एडमिशन कराया था और इनके क्लास टीचर थे शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमरक। क्या नाम? संड और ऐसा नाम कोई रहता है आजकल बच्चों को? एनीवे तो प्रहलाद जी भाई इसको बंद कर लो 24 आवर ऑन मत रखो। मैं कहा करता हूं कि पहले गाय चराने वाले अपने गाय के गले में डंडी बांधते थे, पता चले कि ये गाय कहाँ चल रही है। आजकल के मॉडर्न युग में मोबाइल में भी घंटी बंधी हुई है, ये गाय कहाँ चल रही है। कृपा करके इसको साइलेंस पर कर दो। तो प्रहलाद महाराज जब पढ़ने गए तो पढ़ रहे थे। देखिए प्रहलाद महाराज जन्मजात वैष्णव है, माँ के गर्भ में सब शिक्षा प्राप्त किए थे। तो जो वैष्णव होता है वह आचार विचार में बड़ा कुशल होता है। प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए कि जब वो पढ़ने गए थे इसके गुरु सन और अमर बिल्कुल थर्ड क्लास का पाठ पढ़ाते थे, थर्ड क्लास का ज्ञान देते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज चैलेंज कभी नहीं किए। जो पढ़ाते थे उसको पढ़ लेते थे, याद भी कर लेते थे, सुना भी देते थे, लेकिन अच्छा नहीं मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। ये हम लोगों को सीखना चाहिए। कभी कभी नौसिखुआ भक्त लोग होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं नौसिखुआ भक्त जो नया नया शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो गर्म खून होता है। बाप माँ या कोई बड़ा व्यक्ति कुछ बात कहता है जो फिर सुनावना भावित नहीं है तो हम लोग कहते हैं आप माया में हो, ये माया का बात करे, मैं सुनना नहीं चाहता। प्रहलाद महाराज नहीं कहते तुम दोनों माया में हो गुरु जी, ये वैष्णव का लक्षण है। प्रचार करना है संबंध अभिधेय और प्रयोजन। पहले संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। प्रहलाद महाराज बहुत लंबा बाण मारने वाले थे तो पहले संबंध स्थापित कर रहे थे, ये सीखना चाहिए। भागवतम के एक एक शब्द जो है हम लोगों के जीवन के गीता हुआ भागवत हुआ शिक्षार्थ है। जब संबंध स्थापित करेंगे तो संबंध रहेगा तो व्यक्ति जो काम कहेगा वो दूसरा व्यक्ति करेगा। Don't put the cart before the horse. घोड़े के सामने परछाई पड़ जाए काट का तो चल जाएगा। तो यदि हम शुरू में भड़का देंगे तो लोग सुनेंगे नहीं, गए पागल हो गए किस्म ले। तो हम लोगों को बड़ा सौम्य होना चाहिए इस प्रकार का ज्ञान देने में। प्रहलाद जी वह ज्ञान चुपचाप सुनते रहे, समझते गए और बुद्धिमान तो थे। ये कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर बुद्धिमान तो थे। तो स्वाभाविक है कि अच्छाई और बुराई दोनों बहुत जल्दी फैलती है। आजकल कलयुग में बुराई ज्यादा फैलती है, अच्छाई कम फैलती है, ये सदयुग का बात था। तो बुराई को लोग फैलाते नहीं थे, बुराई को अच्छा लोग सज्जन व्यक्ति बुराई को अच्छा नहीं मानते। हमें कुछ दिन पहले तक इंडिया में भी था महात्मा गांधी के 3 बंदे हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। सज्जन व्यक्ति बुराई को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन दुख की बात है कि कलयुग ऐसा घोर आ गया है कि पेपर के जितने पन्ने हैं या जितने पैराग्राफ हैं आप ढूंढते रहो एक भी अच्छा ही नहीं मिलेगा। सब बुराई मिलेगा और बढ़ा चढ़ा करके बुराई मिलेगा। तो पहले जमाने में लोग बुराई को अच्छा नहीं मानते थे, तो प्रहलाद की क्या अवगुण है, हालांकि अवगुण था भी नहीं, लेकिन इसको कोई बताने वाला नहीं था, केवल अच्छा है, तो सर्वत्र फैल गया। जब हिरण्यकश्यपु यह बात सुना तो स्वाभाविक है, क्या है, हिरण्यकश्यपु के 10 पुत्र थे, अंतिम पुत्र प्रहलाद थे, तो छोटा पुत्र बाप माँ को स्वाभाविक होता है, प्यारा होता है, तो हिरण्यकश्यपु का दिल बहुत विषाद हो गया, पूरे नहीं समा रहा था सुनकर के प्रहलाद के गुणों को, तो एक दिन बुलाया, प्रेम से बुलाया, पुचकारते हुए जगह पर बैठाया और प्रहलाद से पूछा कि बेटा बताओ, तुम्हारा बहुत कुछ मैं गुणगान सुन लिया, तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, पढ़ने में तेज हो, गुरु के आज्ञा का पालन कर रहे हो, तुम्हें शीलता भी है, तुम्हारा करेक्टर अच्छा है, तो तुम्हें हम बताओ कि सबसे अच्छा चीज क्या सीखे हो। साधु यद भवान, तुम जो अच्छा मानते हो, मन्यते साधु यद भवान, जो पढ़ाई पढ़ो तुमको अच्छा क्या लगता है वो बात बताओ। स्वाभाविक है कि जो बात हमको अच्छा लगता है उसका हम वर्णन विस्तार से करना चाहते हैं, और जो बात अच्छा नहीं था शॉर्टकट कर मार देते हैं, ये करते हैं ना। तो हिरण्यकश्यप जैसे आजकल के ही बाप माँ बच्चों से पूछते हैं, बेटा बताओ क्या सीखे हो, तो बच्चा बड़ा खुश होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, बताना शुरू करता है बच्चा क्या सीखता है। हम लोग किसी घर जाते हैं तो भले बाप माँ नहीं जानते हैं, कहते हैं बेटा गायत्री मंत्र सुना दो महाराज जी को, बच्चे गायत्री मंत्र सुनाते हैं, नहीं तुम क्या पोएम पढ़े हो उसी का सुना। तो स्वाभाविक है, प्रेम है, तो बड़ा सुंदर बात करते हैं, मन से साधु यद भवान, जो तुम ही अच्छा लगता हो, क्या अच्छा है वो बताओ, पढ़ाई पढ़े हो उसमें क्या अच्छा है वो बात बताओ, जो तुमको अच्छा लगता है, चाहे पढ़ाई में हो या ना हो। तो प्रहलाद महाराज कहने जा रहे हैं इस सन अमर नहीं पढ़ाए थे, पक्का स्थगित जवाब दिए हैं, कहते मन्ने मन्यते साधु यद भवान, तुम्हें जो अच्छा लगता है, कहीं से सुने हो कहीं से पढ़ो, कोई बाउंड्री नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो तुम पढ़े हो या शिक्षित हो साधु तद भवान, जो तुम शिक्षा प्राप्त की हो उसमें अच्छा तुम्हें क्या लगता है वो बताओ, वो नहीं पूछते, मन्यते जो तुम अच्छा मानते। तो ओपन फील्ड मिल गया प्रहलाद जी को, अच्छा अवसर है प्रचार करने का, तो प्रहलाद जी प्रचार करना शुरू करे। तस्साधु मन्ने असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्धे असद्ग्रहाय हित्वा तपातं गृहान्धकूपं वनं गतोय हरि महाश्रयेत। साधु चीज आप जानना चाहते हैं पिताजी, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, साधु मतलब अच्छा, साधु और संत में भेद होता है, जिसका आचरण शुद्ध होता है उसे साधु कहते हैं और जिसका दिल शुद्ध होता है उसे संत कहते हैं। तो साधु का मतलब अच्छा, अच्छा तुम्हें क्या लगता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी क्या अच्छा बात बताऊं, मैं सोच रहा था कि संसार में सब लोग बड़े दुखी हैं। क्यों? दुख का कारण है क्या है, सम उद्विग्न धिया, सम मतलब हमेशा 24 hours a day, उद्विग्न मतलब डिस्टर्ब और धिया मतलब बुद्धि और मन, जो 24 आवर ए डे डिस्टर्ब रहते हैं संसार में लोग, सदा सम, दो शब्द है सदा मतलब कॉन्स्टेंटली 24 आवर, सम मतलब सम्यक रूप से, केव कारण क्या है, असत ग्रह, असत वस्तु को ग्रहण करने के चलते संसार में लोग दुखी हैं। तो संसार में दुख का कारण है असत वस्तु को ग्रहण करना। भगवान सत हैं और भगवान के अलावा और जितना वस्तु है वो असत है। भगवान के अलावा तो कोई प्रश्न कर सकता है, या कोई ऐसी वस्तु है जो भगवान के अलावा प्रश्न सकता है ना, सब कुछ भगवान का है, सब भगवान से निकला हुआ है। हम सर्वस्व प्रभव पत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुद्धा भाव समन्वित। तो भगवान से सब कुछ निकला हुआ है, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान का क्रिएशन खराब कैसे हो सकता है, कभी खराब नहीं हो सकता है। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे तो भक्तों से पूछ रहे थे, जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो विभिन्न प्रकार के पौधे थे, पेड़ था, झाड़ियां थी इत्यादि। प्रभुपाद जी पूछे कि व्हाट इज दिस, तो आई थिंक प्रभुपाद जी कैलिफोर्निया में थे तो वहां ऑरेंज कैलिफोर्निया का फेमस है और रोड के किनारे खूब ऑरेंज होता है। हम एक बार ड्राइव कर रहे थे तो बहुत ऑरेंज गिर रहा था, मैं क्या एक दो लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी पूछे कि व्हाट इज दिस, वह ऑरेंज है, आगे बढ़े तो व्हाट इज दिस, तो किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी फ्लावर। तो थोड़ा और आगे बढ़ प्रभा जी पूछे एक झाड़ी के विषय में, व्हाट इज दिस, तो डिवोटी ने कहा दिस इज यूजलेस क्रीपर, ये यूजलेस क्रीपर है। तो प्रभा जी के तरफ देखे, यू आर यूजलेस, उस डिवोटी का तुम बेकार के हो, वो झाड़ी बेकार की नहीं है। प्रभा जी अपना जो बुगली था उसको खड़ा कर दिए और रुक गए सब भक्तों वाले। तो भक्त जो था तमाम के समारा थे, तो उन्होंने बात बताया था तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि तमाम के समारा बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और उनको कोई कह दे तो यूजलेस है तो प्रभुपाद जी कह सकते, दूसरा कोई किसी को इस कान में शक्ति नहीं था ये बात कहने के लिए। एनीवे तो वो तो अक्के बक्के हो गए थे और सब भक्त लोग सुन रहे हैं तमाम विष्णु महाराज को प्रभुपाद ने कह दिया यूजलेस। तो प्रभुपाद जी कहे कि दिस इज क्रिएटेड बाय कृष्णा, ये जो क्रीपर है ये भगवान के द्वारा क्रिएटेड है, इसका कुछ ना कुछ सदुपयोग जरूर है। तुम नहीं जानते हो तो कहते हो कि क्रीपर यूजलेस है। अब तुम बताओ, जब तुम नहीं जानते हो तुम यूजलेस हो या क्रीपर यूजलेस है, सिंस यू डू नॉट नो सो यू आर यूजलेस नॉट द क्रीपर, द क्रीपर है यूज। जैसे उदाहरण में आजकल अलोवेरा होता है ना, गांव में खेत के किनारे पड़ता था, कोई जानता नहीं था अलोवेरा क्या होता है, लेकिन उसका महत्व है, गांव के लोग नहीं जानते इसका महत्व है, आजकल सबसे महंगा है। तो सब चीज का प्रयोग है, सब चीज का उपयोग है, सब चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट वस्तु के द्वारा, इंपॉर्टेंट व्यक्ति के द्वारा क्रिएटेड है। तो संसार में असत कुछ नहीं है, सब कुछ सत है। असत तब होता है जब भगवान से मुझसे भिन्न मानते हैं, भगवान से अलग मानते हैं, असत ग्रह है, उन वस्तुओं को जब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मान लेते हैं तो असत वस्तु हो जाती है। जैसे बिल्डिंग है, मोटर गाड़ी है, चाहे भोजन ही क्यों ना हो, यदि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मान ले तो यह असत हो गया, लेकिन यदि भगवान को अर्पित करें तो सत हो गया। हम जो कुछ भी यहां पर देख रहे हैं ये भगवान का है। हम लोग जूता पहनकर के अंदर नहीं जाते हैं, क्या रूम है बहुत रूम जाते हैं, क्यों? क्योंकि सब भगवान संबंध है। तो दुख का कारण है असत ग्रहाय, भगवान से अलग रह कर करके इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावना है वो असत कहलाती है, यही दुख का कारण है। तो हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, बातों तो अच्छा कह रहा है, तो जो दुखी लोग हैं तो फिर सुखी कैसे, ये तो बताओ, रोग तो बता दिया लेकिन उसका निदान क्या है। तो प्रहलाद जी निदान जो कहे, हिरण्यकश्यप का कान फट गया सुन करके, कहते हित्वात अपात गृहंधकूपम, इस घर गृहस्थी को छोड़ दीजिए जो अंधकूप के समान है। अंधकूप समझते हो, कुआं जिसमें पानी ना हो, कुआं आप देखे हो कितने लोग कुआं, आप दिल्ली वाले देखे हो, बॉम्बे में कुछ ही बच्चे जो कुआं किसे कहते हैं तो पता नहीं, कुआं देखे नहीं, वो म्यूनिसिपैलिटी का हॉल देखे हो बताना पड़ता है कैसे ही कुआं होता है, सुवेज का जो कुछ दिन में यहाँ भी कुआं देखने को मिलेगा, आज की जनरेशन के बाद वो धौला कुआं कोई गांव वो याद आएगा। तो वह कुआं जिसमें पानी ना हो, तो सांप भी चींटी आते रहते हैं, तो जिस घर की रस्ते में वह ना होता है वहां पर डेली सांप बिच्छू पत्नी पुत्र परिवार के रूप में दंश मारते रहते हैं, वह दुख का कारण है। अपात गृहंधकूपम, तो बात तो बड़ा अच्छा करता है, तो करें क्या, घर द्वार जो कावड़ पर सोएंगे क्या, नहीं बनूंगा, तो मन में जाइए वहां भी ठीक था, वहां करेंगे क्या, हरि आश्रय तो हरि का शरण ग्रहण कीजिए, मन में जाकर के बंदर मत बन जाइए, और हरि का नाम सुनते हिरण्यकश्यप का पारा चढ़ गया कि हरि का आश्रय। तब नारद जी कहते हैं श्रुत्वा पुत्र गृह गृहोदैत्यम पर पक्ष समाहिता जहां स्वबुद्धि बराना विद्यते पर बुद्धि भी। प्रहलाद जी छोटे बालक थे, इस प्रकार से पर पक्ष विपक्ष का, सब लोग कोई विपक्ष का बात सुनना चाहता है और विपक्ष का गुणगान नहीं सुनना चाहता है। मैं कहीं पेपर में पढ़ रहा था कि कोई पार्टी का आदमी नरेंद्र मोदी का गुणगान कर दिया, उसको पार्टी से निकाल दिया, कल गुणगान कर दिया तो पार्टी से निकाल दिया, समाजवादी पार्टी का पता है, कानपुर में पढ़ रहा था। तो दूसरे पक्ष का गुणगान कोई नहीं सुनना चाहता है। तो हिरण्यकश्यप के सब ये नाती पोते लोग हैं, तो दूसरे गुणगान नहीं सुनना चाहते हैं। भक्त लोग केवल दूसरे का ही गुणगान सुनना चाहते हैं, अपना गुणगान नहीं सुनना चाहते हैं। सही सुना अमानिना मान देना, वे लोग विष्णु और वैष्णव का ही गुणगान सुनना चाहते हैं और विष्णु और वैष्णव का ही गुणगान करते हैं, अपना गुणगान पर तो हरे कृष्ण हम लोग सुनना चाहते हैं, चेतन महाप्रभु ने चाहते थे कान बंद कर लेते। तो पर पक्ष समाहित समाहित श्रद्धा पूर्वक प्रहलाद जी बात बता रहे थे, पर पक्ष का गुणगान कर रहे थे। यह सुन करके हिरण्यकश्यप को सोचा बच्चा है, इसकी बुद्धि किसी ने खराब कर दिया, क्योंकि बच्चे को जो सिखाया जाए वही बोलते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे लोग घर में आकर के बाप माँ के सामने अच्छा बात बोलते हैं, बाप माँ कहाँ सुन लिया भाई, कभी गाली भी देते हैं छोटे बच्चे, कहाँ सुन लिया एक बात, कितने बताए तुमको, तो जो सुनते हैं विचार करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु हंसा, जहां सबुद्धि बालाना विद्यते पर बुद्धि भी, वो समझा कि ये विपक्षी लोग किसे कान भर दिए हैं, इसलिए तो जो अटेंडेंस प्रहलाद को लेकर के आए थे उन लोगों को डांटते हुए प्रहलाद ने कहा कि हिरण्यकश्यपु ने कहा ले जाओ इसको गुरु आश्रम में और कहो ठीक से पढ़ाई कराने का, उल्टा सुल्टा पढ़ाई बंद कराओ। अब वहां पर जब हिरण्यकश्यपु के आदेश के साथ में ये नौकर लोग प्रहलाद को लेकर गए तो सन और अमर से पूरा बात बताए कि क्या क्या हुआ। ये आप लोग पूछे कि कहा, क्योंकि प्रहलाद पढ़ने लिखने बहुत तेज थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, सुशील थे, जेंटिल बिहेवियर था, तो एक गुरु पुत्र लोग बड़े खुश हो रहे थे, उनके दिल में हुआ कि हम लोग कुछ प्राइस मिलेगा है, प्रहलाद इतना अच्छा है तो पिताजी जो पूछे होंगे अच्छा जवाब दिया होगा और पिताजी बहुत खुश होंगे तो हम लोगों को प्राइज देंगे। तो ये लोग पूछे उन नौकरों से भाई क्या हुआ वहां पर, सब कुछ ठीक तो है ना, सब ठीक, क्या क्या बताया प्रहलाद, तो सब बात इन नौकरों ने बताया और बात के साथ साथ आज्ञा भी बताया कि हिरण्यकश्यपु का आज्ञा क्या है। हिरण्यकश्यपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया, हे असुरों, इस बालक के गुरुकुल में जहां यह शिक्षा पाता है इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बाहर वाला कोई आकर के सिखाता है। तो पहला काम आज्ञा दिया हिरण्यकश्यपु ने इन सहायकों को, नौकरों को, कि तुम लोग सिक्योरिटी टाइट रखो, मेडल लेटर कुछ रखो और वहां पर टाइट रखना चाहिए सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो जिससे इसकी बुद्धि छद्म वेश में घूमने वाले हरे कृष्ण वालों के द्वारा प्रभावित न हो पाए। भक्त लोग छद्म वेश में जाते हैं प्रचार करने के लिए, पता भी नहीं चलता है। एनीवे, और उन लोगों को कहा, बतला दिया क्या क्या हुआ है। तब सन और अमर तो अंदर से डर गए थे कि बाप रे बाप सब गड़बड़ कर दिया, लेकिन बाहर से सौम्य भाव से प्रहलाद से पूछ रहे हैं। ये एक ट्रिक है, ये जानना चाहिए, प्रचारकों को जानना चाहिए कि किस व्यक्ति से कैसे बात किया जाए। ये शिक्षक थे, टीचर थे, और कृष्णा कॉन्शियसनेस मोमेंट के जितने भक्त हैं सब टीचर हैं। तो टीचरों को जानना चाहिए कि कैसे शिक्षा देनी चाहिए। प्रथम शिक्षा होती है आचरण से, आचरण का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरतो जनः सयत् प्रमाण कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। इस श्लोक में दो बात बताई गई है, एक आचरण का प्रभाव और दूसरा इंस्ट्रक्शन का प्रभाव, उपदेश का प्रभाव। इन दोनों में से आप देखें तो आचरण के प्रभाव पर बहुत बल दिया गया है। आचरण के लिए भगवान चार विशेषण लगाए हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत् तत्, यत यत और तत् तत्, दो बार यत यत और दो बार तत् तत् लगाए, किसके लिए, आचरण के लिए। लेकिन प्रमाण के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए स यत प्रमाण कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते, केवल दो बार। इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आचरण, कैरेक्टर। महात्मा गांधी कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। पहले यह था कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट. लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. पहले लोग आचरण पर, तो वैष्णवों को, हम लोगों को वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. तो चार नियम का पालन करते हुए आचरण करें, मंगल आरती, क्लास, गुरु पूजा में आए. अभी मैराथन का समय है, बुक सेशन का समय है, तो आचरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा. कोई कितना भी एक्सपर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, यदि उसका आचरण सही है तो प्यूरिटी दी फोर्स, प्यूरिटी आएगी. तो आचरण के द्वारा, बाद में इंस्ट्रक्शन के द्वारा. ते लोग पहले अपना आचरण, टीचर थे संड और अमर, शिक्षा देना चाहते थे, शिक्षा दे रहे थे, तो बड़े प्यार से. प्रहलाद जी को मानो राजा का बेटा था, बड़ा दुलारा था. जैसे हिरण्यकश्यप लेकर जंगल पर बैठा है, वैसे ये लोग भी बुला है, नदी में बैठा है. कहते बस प्रहलाद भद्रम थे, नहीं हाँ, दैतयाज का प्रशस्य स्वलक्षणा वाचा संवृक्षंत सामभी. किसी चीज के सत्य को पता लगाने के लिए नीति शास्त्र के अनुसार साम, दाम, भेद, भय और दंड, ये पांच हथकंडे अपनाने पड़ते हैं. तो उसमें से प्रथम जो हथकंडा है वह है साम. तो यहां पर आया हुआ है साम भी. साम मतलब सौम्य भाव से, सौम्य भाव से, विनम्र भाव से. जब हम किसी को प्रचार करें तो विनम्र भाव से प्रचार करने चाहिए. दंते त्रिणा धरे, नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रचार भगवान है. जब हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रचार करने जा रहे थे तो लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके हरि नाम का भीख मांग रहे थे. भैया जगाई मधारी के पास भी हाथ जोड़ करके हरि नाम का भीख मांगे कि तुम लोग इस हरि नाम को अपनाओ. हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे.
तो प्रशस्य स्वलक्षणा वाचा, स्वलक्षण नम्रता पूर्वक बिल्कुल बात किए. कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी से नम्रता पूर्वक बात करता तो लज्जा लगती हम लोगों को. चूंकि प्रहलाद छोटे थे तो नम्रता पूर्वक बात किए, संप्रिक्षन्त सम्यक रूप से. देखिए जब हम लोग जाते हैं किसी को मेंबर बनाने के लिए तो पहले प्रसाद देते हैं, संप्रिक्षन्त प्रसाद देते हैं, थोड़ा खुश होगा. तो बच्चों से कुछ निकालना हो तो कैडबरी चॉकलेट लेकर चले जाओ. संप्रिक्षन्ता का मतलब कुछ गिफ्ट भी दिए गुरु, गुरु लोग प्रहलाद को चॉकलेट वकलेट दे दिए उन्होंने. क्योंकि सत्य निकालने के लिए जिह्वा से सत्य बोला जाता, जिह्वा जो है वही वाच का प्रवाच है, यानी बोलने का काम जिह्वा का है ना. तो जिह्वा को पवित्र कर दे पहले, तब सत्य बोलेगा. प्रसाद दे दू पवित्र हो जाएगा, यानी भोजन खिला दे. खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खिला करके किसी को अपने पक्ष में किया जा सकता है. दुर्योधन ने माधव नरेश को अपने पक्ष में कर लिया खिला पिला करके, यहां तक कि नकुल सहदेव उनके भांजे थे लेकिन उनके विरुद्ध में लड़ना पड़ा खिला करके ही प्रभुपाद जी पूरे हिप्पियों को हैप्पी बना दिए प्रसाद खिला करके और हम लोग ही प्रसाद खिला करके लोगों को मन ठीक कर लेते हैं। तो संप्रिक्षंत मतलब खिला खिला करके कुछ कह कर करके अच्छा कान के द्वारा स्वलक्षण प्रशस्त स्वलक्षाया वाचा पहले तो बिल्कुल शांत थे नम्रता पूर्वक सुमधुर वाणी में अब तक से हमेशा लोग कटु वाणी बोलने वाले थे यार पहले बार सुमधुर वाणी बोल रहे हैं शाम भी नम्रता पूर्वक प्रेम से प्रहलाद से पूछ रहे हैं कहते वस् प्रहलाद भद्रम थे सत्यम कथम मांसा हे पुत्र प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो तुम राजपुत्र हो। देखो बेटा तुम बिल्कुल सही सही बात बताना जो हम लोग पूछने जा रहे हैं मांसा झूठ बिल्कुल मत बोलना। बालम अति क्रतुभ्य में बुद्धि विपर्षय अरे तुम अन्य बालकों के साथ में पढ़ाई करते हो लेकिन ये तुम्हारी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई ऐसा बुद्धि तो हम लोगों ने कभी पढ़ाया नहीं और न तो इन मूर्ख बालकों को ऐसा ज्ञान है जो हम पढ़ाए हैं वही ये लोग जानते हैं तो तुम्हारी बुद्धि विपरीत कैसे हो गई ये बुद्धि भेद कहां से तुम्हें प्राप्त हो गया। कहते हैं श्रोतु काम गुरुणाम नंदन हे कुल नंदन हे कुल श्रेष्ठ हम तुम्हारे गुरु हैं अब तक से हम तुमको पढ़ाए हैं आज हम तुमसे सुनना चाहते हैं तुम हमको पढ़ा दो ये बताओ इतना सुंदर ज्ञान कहां से प्राप्त किया क्या कहने का तरीका है कि हमें डांट है ऐसा ज्ञान कहां प्राप्त किया किसे बताया ये भी सुन सकता है लेकिन इसी बात को इनडायरेक्ट रूप में बातें जो है देखिए कभी कभी कौमा इत्यादि का भी असर पड़ता है कहते ना रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो एक बार उतना ही नहीं एक बात देखिए इसका तीन अर्थ आपको निकालना कहां जा रहे हो एक अर्थ हो गया कहां जा रहे हो पूछा इंक्वायरी कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो हैं? एक तो पूछा डांट करके एक जानने के लिए और एक डाउट के साथ में कहां जा रहे भाई गड़बड़ाई गया तो बात एक ही है लेकिन तो वही यहां पर ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई पटा तू इतना अच्छा जान गया भाई बताओ कहां से जान गया तुम्हारे बंधु लोग तो जानते रहिए ना हमने पढ़ाया तुम्हारा ज्ञान तो बड़ा अच्छा है तुम्हारे पिताजी बड़ा गुणगान कर रहे थे ये तो कहां सीख लिया प्रहलाद जी बड़े चतुर थे वो जानते थे लोग बड़ा क्या जानना चाहते हैं लोग गुरु जी का नाम जानना चाहते हैं तो प्रहलाद जी भगवान को प्रणाम करके कहते हैं एनीवे वो तो आगे कहेंगे तुम लोगों के बस की बात नहीं है जानना और श्रवण कीर्तन की बात नहीं एनीवे समराइज दिस वर्स यहां पर प्रहलाद जी को लाया गया है और अब गुरु पुत्रों के सामने एक चैलेंज था वह था पता लगाना कि छद्म वेश में कौन आकर के मेरे बेटे को ऐसा ज्ञान देता है उसका नाम क्या है उसका पता क्या है बस यही जानना था और कुछ नहीं जानना था और इसी बात यही टास्क दिए थे संड और अमर को पता लगाने के लिए और संड और अमर प्रहलाद जी से नम्रता पूर्वक शाम के द्वारा जानने का प्रयास कर रहे हैं और आगे कथा कल आप लोग सुनना धन्यवाद हरे कृष्ण। कोई प्रश्न क्वेश्चन और कमेंट नो क्वेश्चन एक सेकेंड பலயங்கர் பண்ணலாம் பெரிய
बताया कि जो आचरण है वो इंस्ट्रक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हम आचरण करते हैं वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही तो बेस्ड होता है। जैसे हमें गुरु से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हमें ऐसे आचरण करना चाहिए, तो इसको कैसे देख सकते हैं?
हाँ, इंस्ट्रक्शन से देखो, एक रिसीविंग है और गिविंग है। रिसीविंग आप इंस्ट्रक्शन कर रहे हो किससे, जिसने आचरण किया है, ठीक है ना? तो आप रिसीविंग कर रहे हो। मैं रिसीविंग बात नहीं कर रहा, मैं गिविंग का बात कर रहा। तो जैसा आप आचरण करेंगे वैसा तत्त्व एवं इतरतो जना, नीचे वाले ज्ञान जो है, ज्ञान जल के समान है, सत्य जल के समान है। जल का स्वभाव है बहना, तो ज्ञान जो है वो फ्लो होता रहे, बहता रहे तो अच्छा है, फ्लो करना चाहिए। लेकिन वह ज्ञान जो आचरण से मिश्रित हो, आचरण समाहित हो, तब उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नहीं तो स्वयं आचरण न करें और दूसरे को उपदेश दें, कोई बात नहीं। बाप फिर पिता हो और बेटा को सिगरेट मत पियो, बेटा कहेगा यू आर हिपोक्रेट, स्वयं सिगरेट पीता है, मुझे कहता है मत पियो, तो आचरण जरूरी है। वो आप लोग कहानी जानते हो ना, एक बुढ़िया थी, उसका बेटा गुड़ खाता था है? और उसे घाव हो जाता था। तो बुढ़िया एक महात्मा के पास आए, सब समझते हैं एक साधु के पास जाने पर आशीर्वाद मिलता है। तो महात्मा ने कहा कि माँ एक हफ्ते बाद आप इसको, बुढ़िया लेकर गई, एक हफ्ते बाद लाए और बाबा ने कहा बेटा आज से तुम गुड़ मत खाना। बुढ़िया गुस्सा आ गया, अरे जब इतना ही कहा तो पहले दिन क्यों नहीं कर दिया, 7 दिन के बाद क्यों कर रहे हो? तो बाबा ने कहा कि माँ देखो, गुड़ खाना कोई पाप नहीं है। मैं उस दिन तक स्वयं गुड़ खाता था, तो मैं कैसे कह दूं गुड़ मत खाओ? अब तुम्हारे बेटा के लिए 7 दिन गुड़ खाना छोड़ दिया, बहुत जरूरी है आचरण। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है?
मुझे मैं पूछ रहा था कि भगवान को ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है या उसके लिए प्रेम करना सकता है?
भक्ति से, भक्त्या माम अभिजानाति जानो यस् अस्मि तत्त्वतः। भगवान अगर हमें अध्याय गीता बताते हैं कि कोई मुझे जान सकता है कि मैं कैसा हूं, कैसे? भक्ति के द्वारा। और ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च अलहेतुकम्। जो भगवान का भक्ति करने लगता है तो ज्ञान वैराग्य मोहित में आ जाते हैं, ज्ञान करने की जरूरत नहीं। आप भक्ति करो, भगवान का नाम लेते रहो। कलयुग में भक्ति करने के जो इसी स्कंद में आगे पढ़ेंगे प्रहलाद जी का उपदेश नवदा भक्ति, तो कोई भक्ति करो, कोई भी श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण कोई भी, सबसे सरल है श्रवण कीर्तन करना। तो भगवान का कथा सुनो और भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आप ज्ञानी हो गए, भगवान का शरण नहीं था सबसे बड़ा ज्ञान। भवनाम जन्मनामंते ज्ञानवान महा प्रवर्तते, जो भगवान के शरण में आता है सबसे बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, और कोई प्रश्न? भक्ति करने से भगवान को जानेंगे और तब भगवान का सेवा करेंगे ऐसा भगवान चाहते हैं, तब प्रेम प्राप्त। प्रेम बहुत दूर का, कहीं दिल्ली दूर है, प्रेम बहुत दूर है। जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।